विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि दुनिया भर में करोड़ों शरणार्थी और प्रवासी जन अपने मेजबान समुदाय की तुलना में कहीं ज्यादा खराब स्वास्थ्य परिणामों का सामना करते हैं, जिससे इन आबादियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति खतरे में पड़ सकती है। WHO की चेतावनी बुधवार यानी 20 जुलाई को प्रकाशित शरणार्थियों और प्रवासियों के स्वास्थ्य पर अपनी पहली रिपोर्ट में आई है। रिपोर्ट में शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए ऐसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की पुकार लगाई गई है, जो उनकी जरूरतों के अनुसार संवेदनशील हो। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में बहु सांस्कृतिक अधिवक्ता उन महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डाल रहे हैं जो स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने के दौरान आती हैं। शरणार्थियों और प्रवासियों के स्वास्थ्य पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली वैश्विक रिपोर्ट में ये एक चौंकाने वाला निष्कर्ष है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रियसिस कहते हैं कि इस आबादी के लिए कभी कभी गंभीर परिणाम होते हैं।
The health needs of refugees and migrants are often neglected or unaddressed in the countries they pass through or settle in. They face multiple barriers, including out-of-pocket costs, discrimination, and fear of detention and deportation. Many countries do have health policies that include health services for refugees and migrants, but too many are either ineffective or are yet to be implemented effectively.
WHO के प्रमुख का ये भी कहना है कि शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए खराब स्वास्थ्य परिणाम अनेक कारकों के फलस्वरूप होते हैं, जिनमें शिक्षा, आय और आवास जैसी सेवाएं हैं। इसके अलावा भाषीय, सांस्कृतिक, कानूनी और अन्य बाधाओं से भी और ज्यादा जटिलता उत्पन्न होती है।
Many migrant workers are engaged in the so-called 3D jobs: dirty, dangerous and demanding, without adequate social and health protection or sufficient occupational health measures. Refugees and migrants are virtually absent from global surveys and health data, making these vulnerable groups almost invisible in the design of health systems and services. We hope governments will use this report to develop evidence-informed policies.
तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के नागरिकों के अलावा स्थायी निवासी के लिए आवेदन करने वाले कई अन्य वीजा धारक, कई प्रवासी और शरणार्थी मेडिकेयर लाभों के लिए पात्र हो सकते हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय छात्र इस स्वास्थ्य संबंधी सेवा को प्राप्त नहीं कर सकते। वे कुछ स्वास्थ्य बीमा निधियों के माध्यम से विदेशी छात्र स्वास्थ्य कवर प्राप्त करने में सक्षम हैं, जिसके लिए न्यूनतम लागत एक साल के लिए लगभग 478 है। क्वींसलैंड में स्थित वर्ल्ड वेलनेस ग्रुप की बहु सांस्कृतिक अधिवक्ता रीटा प्रसाद एल्डिस का कहना है कि प्रवासियों और शरणार्थियों को महत्वपूर्ण मुद्दों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
It's a really complex issue about why these barriers exist, because it's really a mix of sort of cultural health beliefs. There can be language barriers. You know, if information is only available in English, those messages don't reach people. It's not understanding the healthcare system. It's perhaps not even understanding sometimes that certain illnesses can be prevented by vaccines. So you're talking about a whole range of different issues that all sort of come together in translating into a barrier. So you need to really tackle all of that in order to break that down so that people do get that information.
ऑस्ट्रेलियन रिफ्यूजी एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेब स्ट्रिंगर का कहना है कि भाषा की बाधा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है।
That there is enough thought about servicing all of the people from in Australia who are now Australian residents who speak whose first language is in English and who haven't grown up in the Western health system, so don't know what to expect. So I think the health sector in particular could do a lot more to make more inclusive programs.
रीटा प्रसाद एल्डिस का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में कोविड की मृत्यु दर दर्शाती है कि जब स्वास्थ्य सेवा की बात आती है तो प्रवासी और शरणार्थी आबादी कितनी वंचित होती हैं। उन्होंने फरवरी में जारी ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिक ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के विदेशों में जन्मे निवासियों की मृत्यु देश में पैदा हुए लोगों की दर से 3 गुना अधिक है। और डेप स्टिंगर का कहना है कि कोविड मैसेजिंग इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे स्वास्थ्य संदेश ने इन समुदायों की अच्छी सेवा नहीं की।
First of all, some of the early translations were incorrect, and it was all in written form when many communities, particularly humanitarian migrants, often may not read or write in their own language, and so there was an expectation that everybody could read and write. There was an expectation that people could navigate complex online systems to get the right information, which wasn't particularly feasible for some communities, particularly those who even lack access to technology, let alone have digital literacy.
वहीं मेलबर्न में अजालम सीकर रिसोर्स सेंटर के जाना फेबरो का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कुशल प्रवासियों की तुलना में ज्यादा करना पड़ता है।
People seeking asylum and refugees are really at the whim of what visa they're on and the conditions on the visa. And we know that about 20% of people seeking asylum actually don't have access to Medicare. So it's the conditions on their visa and the system is just stacked against people seeking asylum. So we are hopeful of change, but it will take time because it's undoing 9 years of an absolute failed system.
अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए कुछ उपाय कर रही है। फेडरल सरकार के सहयोग से ब्रिस्बेन स्थित वर्ल्ड वेलनेस ग्रुप ने एक हेल्पलाइन शुरू की, जिसका नाम है मल्टीकल्चरल हेल्थ कनेक्ट और जिसका नंबर है 1800186815। SBS न्यूज को दिए गए एक बयान में स्वास्थ्य विभाग ने इन समूहों द्वारा अनुभव की गई स्वास्थ्य असमानताओं को स्वीकार किया है और कहा है कि सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय रूप से विविध समुदायों को कई राष्ट्र रणनीतियों और कार्य योजनाओं में प्राथमिकता वाले आबादी के रूप में पहचाना गया है। SBS न्यूज की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।